नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, कार्ल मार्क्स की कैपिटल, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वॉल्यूम 3। पूंजीवादी उत्पादन को उसके समग्र रूप में समझने का प्रयास है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना करने वाली गंभीर वैचारिक कृति है, न कि अर्थशास्त्र की शुरुआती पाठ्य पुस्तक। इसमें मार्क्स दिखाते हैं कि उत्पादन में पैदा हुआ अतिरिक्त मूल्य बाजार की सतह पर लाभ, ब्याज और भूमि किराए जैसे अलग अलग आय रूपों में कैसे दिखाई देता है। वॉल्यूम 1 में उत्पादन प्रक्रिया और वॉल्यूम 2 में पूंजी के परिसंचरण के बाद यह खंड प्रतिस्पर्धा, औसत लाभ दर, उत्पादन मूल्य, व्यापार, ऋण और संकटों को जोड़ता है। मार्क्स इसे पूरा करके प्रकाशित नहीं कर सके। उनकी पांडुलिपियों को फ्रेडरिक एंगेल्स ने संपादित कर मरणोपरांत प्रकाशित किया। पेंगुन क्लासिक संस्करण व्यापक पाठक के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण अंग्रेजी अनुवादों में गिना जाता है। पुस्तक का उद्देश्य पूंजीवाद को केवल व्यक्तिगत खरीदारों, विक्रेताओं या उद्यमियों के निर्णयों से नहीं, बल्कि मूल्य, स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा और वर्ग संबंधों की परस्पर जुड़ी संरचना से समझना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अतिरिक्त मूल्य का लाभ, ब्याज और भूमि किराए में रूपांतरण। मार्क्स का केंद्रीय तर्क है कि पूंजीवादी उत्पादन में श्रम द्वारा निर्मित अतिरिक्त मूल्य ही बाद में कई आय रूपों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बाजार में यह अक्सर ऐसे प्रतीत होता है मानो उद्योगपति का लाभ केवल उसके अपने पूंजी निवेश की स्वाभाविक कमाई हो, बैंक का ब्याज धन की अपनी उत्पादकता हो और जमींदार का किराया जमीन की अंतर्निहित शक्ति का प्रतिफल हो। मार्क्स इस दिखावे को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार मजदूर के श्रम से पैदा हुआ मूल्य मजदूरी से अधिक होने पर अतिरिक्त मूल्य बनता है। प्रतिस्पर्धा और स्वामित्व की संस्थाएं फिर इस राशि के वितरण के नियम निर्धारित करती हैं। औद्योगिक लाभ, वाणिज्यिक लाभ, ब्याज और किराया इसीलिए अलग स्रोतों से उत्पन्न धन नहीं है, बल्कि एक व्यापक अधिशेष के विभाजित रूप है। यह विश्लेषण आय वितरण को नैतिक पसंद या व्यक्तिगत योग्यता का प्रश्न मानने से रोकता है। यह पूछता है कि उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है, किसके पास भूमि है, किसके पास ऋण देने योग्य धन है और श्रम की शर्तें कौन तय करता है। पुस्तक की विशिष्टता यह है कि वह रोजमर्रा के परिचित आर्थिक रूपों के पीछे छिपे सामाजिक संबंधों को विश्लेषण का विषय बनाती है। दूसरा, लाभ दर के बराबरीकरण और उत्पादन मूल्यों की समस्या। वॉल्यूम 3 में मार्क्स मूल्य और बाजार में मिलने वाले वास्तविक दामों के बीच संबंध को अधिक जटिल स्तर पर रखते हैं। अलग उद्योगों में मशीनों, कच्चे माल और जीवित श्रम का अनुपात समान नहीं होता। यदि वस्तुएं केवल उनमें लगे श्रम के अनुपात में बिकें तो विभिन्न क्षेत्रों में लाभ दरें बहुत अलग रह सकती हैं। लेकिन पूंजी अपेक्षाकृत अधिक लाभ वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। प्रतिस्पर्धा के इस दबाव से लाभ दरों के बराबरीकरण की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसी संदर्भ में मार्क्स उत्पादन मूल्यों की अवधारणा विकसित करते हैं, जहां किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य और औसत लाभ के साथ बाजार में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मूल्य का प्रश्न समाप्त हो जाता है। मार्क्स के लिए कुल स्तर पर मूल्य और अतिरिक्त मूल्य, लाभ तथा उत्पादन मूल्यों को समझने की बुनियाद बने रहते हैं, जबकि अलग अलग वस्तुओं की कीमतें उनसे विचलित हो सकती हैं। यह हिस्सा कठिन इसलिए है क्योंकि यह उत्पादन के भीतर मूल्य निर्माण और पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा के बीच मध्यस्थता समझाता है। इसके माध्यम से मार्क्स बताते हैं कि प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तिगत फर्मों की होड़ नहीं, बल्कि पूंजी के सामाजिक पुनर्वितरण की प्रक्रिया है। तीसरा, लाभ दर के गिरने की प्रवृत्ति और उसके प्रतिरोधी बल। मार्क्स लाभ दर के गिरने की प्रवृत्ति को पूंजीवाद के दीर्घकालीन तनावों की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीपतियों को श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनों, तकनीक और कच्चे माल में अधिक निवेश करने की ओर धकेलती है। चूंकि मार्क्स के मूल्य सिद्धांत में नया मूल्य और अतिरिक्त मूल्य जीवित श्रम से संबंधित है, इसलिए कुल निवेश में जीवित श्रम का अनुपात घटने पर लाभ दर पर दबाव पड़ सकता है। यह कोई सीधी हर वर्ष लागू होने वाली भविष्यवाणी नहीं है। पुस्तक स्वयं ऐसे प्रतिरोधी बलों पर चर्चा करती है जो इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं, जैसे श्रम के शोषण की तीव्रता बढ़ना, मजदूरी पर दबाव, पूंजीगत साधनों का सस्ता होना, विदेशी व्यापार और अतिरिक्त पूंजी का विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण। इसलिए इसे यांत्रिक पतन सिद्धांत समझना गलत होगा। अधिक सटीक रूप में यह बताता है कि उत्पादकता बढ़ाने की वही प्रक्रिया जो व्यक्तिगत फर्म को प्रतिस्पर्धी लाभ देती है, समूची व्यवस्था में लाभप्रद निवेश, मांग और अति उत्पादन के तनाव पैदा कर सकती है। यह अवधारणा बाद के मार्क्सवादी आर्थिक विवादों और पूंजीवादी संकटों के अध्ययन का प्रमुख आधार बनी। चौथा, वाणिज्यिक पूंजी। ब्याजधारी पूंजी और ऋण व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव पुस्तक व्यापार और वित्त को उत्पादन से अलग केवल सहायक गतिविधियां मानकर नहीं छोड़ती। मार्क्स वाणिज्यिक पूंजी की भूमिका समझाते हैं, जो माल की बिक्री और वितरण में विशेषज्ञता के कारण औद्योगिक पूंजी से लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करती है। इसके बाद ब्याजधारी पूंजी का विश्लेषण आता है, जहां धन स्वयं अधिक धन पैदा करने वाला प्रतीत होता है। मार्क्स के लिए यह सबसे रहस्यमय रूपों में से एक है, क्योंकि ऋणदाता को ब्याज मिलता दिखता है, भले वह उत्पादन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से दूर हो। वे बताते हैं कि ब्याज उद्यमी लाभ और ऋण का संबंध उस अतिरिक्त मूल्य के वितरण से जुड़ा है जो उत्पादन में उत्पन्न होता है। ऋण व्यवस्था पूंजी को तेजी से संगठित और केंद्रित कर सकती है, बड़े निवेशों को संभव बना सकती है तथा भुगतान और व्यापार को विस्तृत कर सकती है। साथ ही यही व्यवस्था अटकल, परस्पर देनदारियों और वित्तीय नाजुकता को बढ़ा सकती है। इस दृष्टि से वित्त कोई तटस्थ तकनीकी उपकरण नहीं है, वह स्वामित्व, नियंत्रण और जोखिम के वितरण को बदलता है। आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय संकटों पर विचार करते समय पुस्तक का महत्व इसी कारण बना रहता है, हालांकि उसके ऐतिहासिक उदाहरण 19वीं सदी की परिस्थितियों से आते हैं। अंत में भूमि किराया, प्राकृतिक संसाधन और त्रिएक सूत्र की आलोचना। वॉल्यूम 3 का भूमि किराए संबंधी विश्लेषण दिखाता है कि जमीन केवल प्राकृतिक वस्तु नहीं, निजी स्वामित्व के अधीन आर्थिक संपत्ति भी है। मार्क्स विभेदक किराए की चर्चा करते हैं, जहां भूमि की उर्वरता, स्थान और उत्पादन परिस्थितियों के अंतर से कुछ जमीनों को अतिरिक्त आय मिल सकती है। वे पूर्ण किराए की अवधारणा के माध्यम से भूमि स्वामित्व की उस शक्ति पर भी विचार करते हैं, जो कृषि उत्पादन और बाजार पहुंच को प्रभावित करती है। इस विश्लेषण का व्यापक उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाली आय को केवल प्रकृति की देन मानना अधूरा है। स्वामित्व के कानूनी और सामाजिक संबंध तय करते हैं कि उस आय पर किसका अधिकार होगा। पुस्तक के अंतिम हिस्सों में मार्क्स त्रिएक सूत्र की आलोचना करते हैं, जिसमें पूंजी को लाभ का, भूमि को किराए का और श्रम को मजदूरी का स्वतंत्र स्रोत मान लिया जाता है। उनके अनुसार यह सूत्र सामाजिक संबंधों को वस्तुओं के गुणों की तरह पेश करता है। पूंजी, भूमि और श्रम के पीछे अलग अलग वर्ग, स्थितियां और ऐतिहासिक संस्थाएं मौजूद हैं। इसीलिए यह खंड पर्यावरण, संसाधन नियंत्रण और संपत्ति अधिकारों की समकालीन बहसों के लिए भी उपयोगी वैचारिक प्रश्न प्रदान करता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो पूंजीवाद, आय असमानता, वित्त, भूमि स्वामित्व और आर्थिक संकटों को केवल समाचारों की घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि संरचनात्मक संबंधों के रूप में समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन के गंभीर विद्यार्थी इससे विशेष लाभ पा सकते हैं। शनक आंदोलन, वित्तीय व्यवस्था या सार्वजनिक नीति में रुचि रखने वाले पाठक भी इसके प्रश्नों से समृद्ध हो सकते हैं। फिर भी यह आरंभिक पाठ नहीं है। तर्क घने हैं, अवधारणाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं और मार्क्स का मूल्य सिद्धांत आज भी गहरे मतभेदों का विषय है। इसलिए वॉल्यूम 1 की बुनियादी समझ या किसी विश्वसनीय परिचय के साथ इसे पढ़ना अधिक फलदायी रहता है। इसका व्यावहारिक लाभ तैयार नीतिगत नुस्खे देना नहीं, बल्कि आर्थिक दावों की जांच करने की दृष्टि देना है। उदाहरण के लिए लाभ, ब्याज, किराया और बाजार मूल्य को स्वतः सिद्ध या प्राकृतिक मानने के बजाय पाठक उनके पीछे के उत्पादन और स्वामित्व संबंधों पर प्रश्न उठा सकता है। समान विषय की अनेक अर्थशास्त्र पुस्तकों से इसका अंतर इसकी व्यापक पद्धति में है। यह व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, कृषि और वर्ग संबंधों को अलग खानों में नहीं रखती। एंगल्स द्वारा संपादित अधूरी पांडुलिपियों पर आधारित होने के कारण इसमें संपादकीय और व्याख्यात्मक कठिनाइयां भी हैं। फिर भी पूंजीवादी व्यवस्था को समग्रता में देखने की इसकी महत्वाकांक्षा और वितरण के रूपों के पीछे छिपे सामाजिक आधार को उजागर करने की क्षमता इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र की असाधारण कृति बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।